सायंकालीन सत्र में हम सब के बीच में पधारे हैं मास्टर मुरलीधर, आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी, एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आप यूपी की धरनी पर कानपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1972 में आप मधुबन में आए, लेकिन उसके पहले आपका बाल्यकाल पूरा ही अलौकिक वातावरण में बीता और जिस कारण से बचपन से ही अलौकिक और लौकिक पढ़ाई चलती रही और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई बाबा के घर में आए और 72 में आकर के अपना जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया। तो 72 से लेकर 2022 पूरे 50 वर्षों का समर्पित जीवन का सफर आप तय कर चुके हैं और इस 50 वर्षों के सफर में आपने बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें से सबसे पहली उपलब्धि तो हम कौन से नाम से जानते हैं हम राजू भाई को, मुरली वाले राजू भाई, कि जो मुरलियां सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना और फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना, ये सेवा आपको मिली और उसको बहुत प्यार से आज दिन तक आप निभाते आ रहे हैं और इसके साथ साथ पत्र पुष्प भी आप ही तैयार करते हैं, अव्यक्त मुरलियों में से छोटी छोटी बुकलेट भी आप तैयार करते हैं, दादियों के पास पत्र आते हैं उनका रिप्लाई भी आप भेजते हैं। इतना ही नहीं, मधुबन के अंदर जो स्टेशनरी फोटोकॉपी डिपार्टमेंट है वो भी आपके ही निर्देशन में चलता है और वर्तमान में तो हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके आप हमारे वाइस चेयरपर्सन हैं, जिस प्रभाग के द्वारा एक बहुत सुंदर कंसेप्ट सभी को मिला है, कौन सा, शाश्वत यौगिक खेती। और साथ साथ चूंकि मुरलियों से ही आपकी पूरी शुरुआत हुई है, मुरली सेवा से ही जो आज दिन तक चल रही है, तो सारा ही समय आप बाबा के ज्ञान रूपी रत्नों से खेलते रहते हैं। तो एक मुरलियों पर आधारित भी आपने टॉक शो किया है अमूल्य रतन के नाम से, जिसके 1200 एपिसोड आप पूरे कर चुके हैं और आप सब अवश्य ही उसका लाभ लेते होंगे। और आज भी हमने अव्यक्त मुरली का ही टॉपिक दिया है भ्राता जी को। संडे की मुरली में बाबा ने कहा ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग, तो बाबा ने तो हमें समझा दिया लेकिन उसका और थोड़ा खुलासा हम भ्राता जी के अनुभवों से सुनेंगे। तो सुनते हैं भ्राता जी को, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बाबा के घर की तपस्या भूमि की सुंदर अनुभूतियां आप सब यहां कर रहे होंगे, जहां पर स्वयं ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, हमारी दादियों ने तपस्या की, ये बाबा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, विशेष तपस्या भूमि है। जो भी बाबा के बच्चे यहाँ आते हैं उन्हें योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप बाबा के साथ योग लगा रहता है। बाबा ने जो मुरली चलाई इस संडे की, समझ तो गए होंगे कि बाबा ऐसी प्यार भरी शिक्षाएं हमें क्यों देते, क्योंकि भावनाएं अपने स्थान पर होती हैं और भावनाएं होनी भी चाहिए। अगर भावनाएं नहीं होंगी तो भगवान को अपने प्यार के बंधन में हम नहीं बांध सकते। भक्ति के अंदर भावनाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। जिसने भावना पूर्वक भगवान को याद किया वो भोलानाथ है, भोलों का नाथ है, खुद भोला नहीं है, भोलों का नाथ है। और जिन भोले बच्चों ने बड़ी भावना से सच्चे दिल से बाबा कहा है, याद किया है, उनको बहुत सी प्राप्तियां हुई हैं। ज्ञान मार्ग में भी भावना का बहुत बड़ा स्थान है। भावनाएं जरूरी हैं। अगर भावनाएं न हो तो मैं समझता हूँ ये भोग की सिस्टम भी न हो। भावना से ही बाबा को हम सब भोग लगाते हैं। वैसे तो बाबा कहता है मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन बच्चों को श्रीमत है, बाबा को बिना खिलाए आप खा नहीं सकते। बाबा को ऑफर करो, भोग लगाओ। और जो जितनी भावना से बाबा को याद करते हैं, भोग लगाते हैं, कई जगह के ऐसे ऐसे सुंदर अनुभव हमने सुने हैं कि भावना से भोग लगाने से उनका सेंटर निर्विघ्न हो गया, सेंटर भरपूर हो गया। एक स्थान पर मैं गया डेली 4 बजे अमृत वेले भोग लगता है। जितने भी भाई बहने आए वहाँ पर एक कुमारों का ग्रुप था। सेंटर के बिल्कुल बाजू में ही उन्होंने मकान लिया हुआ था। 50-60 कुमारी एक साथ रहते थे और वो टीचर भी बड़ी भावना वाली थी। तो रोज सवेरे सवेरे 4 बजे एक बहन पहले 3 बजे उठ के नहाती थी, स्नान करते और उसके बाद बाबा के लिए भोग बनाती, एक ही चीज बनाती बहुत प्यार से बना के। जब योग शुरू होता तो बाबा के सामने भोग में रखती और जब योग पूरा होता उसी समय जितने योग में होते उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद ऐसे खिला देते। कहती है इससे इतनी भरपूरता हुई, इतना सेवा केंद्र हमारा भरपूर हो गया जो कोई कमी नहीं, कितने विघ्न खत्म हो गए, कोई बात ही ऐसी नहीं रही। तो भावना का भाड़ा तो संगम पर भी मिलता है। भावना से कई स्थानों पर हमने देखा है बाबा के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें नॉलेजफुल बनाया है, ज्ञानित्व आत्मा बनाया है, और कई बार भावनाएं धोखा भी दे देती, बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं एक दूसरे में। भावना रखते रखते कहीं ना कहीं नुकसान कर लेते हैं। और उस दिन जो मुरली चली है मुझे उसी ने याद आती है। कर्नाटक के भाई बहने मधुबन में आए थे, ग्रुप था, और उधरणी बहुत भावना वाली है, लेकिन भावना के साथ बाबा हमें समझ देते हैं, ज्ञान देते हैं कैसे ही नहीं चलना है, जाना है बाबा के घर में। यहाँ की हवा पानी, यहाँ का वायुमंडल, शरीर की, शरीर कैसा है, शरीर को क्या चाहिए। ज्ञान स्वरूप आत्माएं केवल आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं रखती हैं, अपने शरीर का भी ज्ञान चाहिए। तो यहाँ आए और बाबा आने वाले थे, उसी दिन एक ही घंटे में 2 ने शरीर छोड़ दिया। पहले एक गया और 1 घंटे के बाद दूसरा चला गया। और ओम शांति भवन में ही उनको भीड़ थी, ज्यादा संख्या थी, तो वहीं ठहराया था। बाबा ऊपर आए हुए हैं और नीचे ये खेल चल रहा है। तो बाबा ने मुरली भी ऐसी चलाई कि बहनें ले आती हैं, ये भी एक समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पहाड़ी पर हम जा रहे हैं, पहाड़ी की हवा पानी इस भाई को इस बहन को सूट करेगी या नहीं करेगी, वहाँ ऑक्सीजन कम है, कई प्रकार की बातें आती हैं। वैसे तो ठंडी नहीं थी, अप्रैल की मुरली है, लेकिन बड़ी आयु थी और कुछ बीमारियां होती हैं सांस की या हार्ट की, तो यहाँ आकर के वो बाबा की गोदी में चले गए। तो बाबा ने कहा इसको कहेंगे तो मीठा ड्रामा ही, लेकिन ये भी ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है, आगे के लिए अटेंशन देना। ये मुरली चली और इसी से संबंधित बाबा ने इसी टॉपिक को बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने रखा कि बच्चे भावना और स्नेह, स्नेह के आधार से कई बाबा के बच्चे ज्ञान में चले हैं, स्नेही बने, अच्छा लगा, बहनों की जीवन अच्छी लगी, ज्ञान अच्छा लगा, परिवार अच्छा लगा। जो आते हैं उनको पालना देती हैं बहनें, बहुत प्यार से बिठाती हैं, टोली खिलाती हैं, वो स्नेही बहुत अच्छे सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन सहयोगी बनते हैं, कई बार योगी नहीं बनते हैं। स्नेह में आप कहो ये काम कर दो, ये सेवा है ये कर दो, फटाफट जाएंगे, भागेंगे दौड़ेंगे, लेकिन योग के लिए समय नहीं है। तो बाबा ने हम सबका ध्यान खिंचवाया कि बच्चे भावनाएं ज्ञान युक्त चाहिए और योग जो है वो स्नेह युक्त चाहिए। अगर स्नेह नहीं है और आप योग करें, पहले बहुत बहुत दिल के अंदर बाबा कौन है, क्या है, किससे मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ, किससे मेरी रूह रिहान होगी, किससे हमारे संबंध हैं, बहुत प्यार अंदर से उमड़ना चाहिए। जब प्यार होता है ना तो उसमें याद करने की मेहनत नहीं होती, अपने आप उसकी याद आती। किसी व्यक्ति से प्यार हो जाए, शरीरधारी से भी प्यार हो जाता है, तो बाबा कई बार मुरली में आशिक मासुक की कहानी सुनाते हैं। उसका विकारी प्यार नहीं था, लेकिन एक शरीर से प्यार था। वो जहाँ भी बैठता था उसके सामने वो लैला मजनू घूमते थे, आपस में देखते रहते, सामने हाजिर हो जाते थे। तो भक्ति के अंदर भावना के आधार से, स्नेह के आधार से लोगों ने बड़े अलग अलग अनुभव किए हैं। बाबा हम सबको योग युक्त बनाते हैं, योगी तू आत्मा बनाते हैं, और योगी तू आत्मा की निशानियां भी हमारे जीवन में होनी चाहिए, केवल स्नेह नहीं। बाबा बाबा कई ऐसे हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, याद करते हैं, और उन्हें भी बाबा बड़े अच्छे अच्छे अनुभव कराता है, साथ के अनुभव कराता है, मदद देता है। लेकिन जो सदा काल की स्थिति बननी चाहिए, जो विश्व कल्याण की सेवा होनी चाहिए, बाबा तो अपने बच्चों को फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं। फाउंडेशन है ज्ञान और योग। ऐसे ही चलते रहेंगे तो कभी भी थोड़ी बहुत लहर आएगी माया की, कोई विघ्न आएगा तो खींच ले जाएगा उस दुनिया के अंदर। लेकिन अगर किसी ने बहुत अच्छा अपना ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत किया है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी बातें आ जाए, उसको हिला नहीं सकते, वो जानता है सत्यता क्या है। नहीं तो कई लोग, मुझे याद आता है एक बार यहाँ पर बहुत सारी हम लोगों ने गीता पाठशालाएं खोली आबू के चारों तरफ, शांतिवन के इधर उधर गांव में जा जा करके बहुत सेवाएं की, करीब 10-12-15 गीता पाठशालाएं खुल गई। हमारी बहनें भाई अलग अलग जा जा के क्लास कराते रहे, लेकिन एक छोटा सा कुछ घटना घटी, यज्ञ बड़ा है, कोई ऐसा आया और घटना घटी, अखबारों में कुछ गलत लिख गया, अखबारों में आया, वो सारी गीता पाठशालाएं बंद हो गई एक ढक से। कोई गीता पाठशाला में नहीं आए कि ब्रह्मा कुमारियों में ये होता है। न्यूज तो बनाने वाले फटाफट डाल देते हैं बिना इंक्वायरी, बिना जांच के, कोई थोड़ी सी बात हो जाए तो फटाफट गलत न्यूज छप जाती है। और अगर उन्होंने फाउंडेशन मजबूत नहीं किया है ज्ञान और योग का, तो वो ज्ञान में आगे बढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, फट से हिल जाएंगे, कहेंगे यहां भी ऐसे होता है, यहां भी ऐसे होता है, क्या जरूरत है। तो बाबा भी अपने बच्चों को ज्ञान और योग का फाउंडेशन मजबूत करें। ज्ञानी तो आत्मा समझदार, भावनाएं जरूरी हैं, भावनाओं के बिना तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन भावना के साथ विवेक समझ। अगर हमें बाबा ने अपना सत्य परिचय दिया है तो भावना तो हमारी है, लेकिन उस परिचय के आधार से अगर हम बाबा कहते हैं तो एक सेकंड में हम इस शरीर से, इस दुनिया से डिटैच होकर के अपने घर में जा सकते हैं। भावना है लेकिन विवेक हमें बता रहा है, ज्ञान कह रहा है कि वो कहाँ है। ऐसे नहीं भावना में जिधर देखो तू ही तू है, तू ही तू है। भक्ति में तो यही कहा ना, भावना का भाड़ा भी मिला, उनको भी मिला, अनुभव भी कराया, क्योंकि भक्तों की गलती नहीं है। कई बार ऐसे होता है, बाबा कई बार कहते हैं कि कोई बहुत दिल से नौधा भक्ति अगर करता है, चाहे जिसकी उसने किया, गणेश की किया, हनुमान की किया, किसी की भी किया, तो बाबा के हाथ में चाबी है साक्षात्कार कराने की। अगर किसी को उसी रूप का साक्षात्कार हो गया, मानो श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया तो चलो देव है, देवता, लेकिन ये जो बनाए गए श्री गणेश की ऐसी शक्ल बनाई गई, श्री हनुमान जी की ऐसी बनाई गई, वास्तव में भावना के आधार से वही रूप में उनको दिखाई देता। हनुमान है कौन, गणेश है कौन, उसका पूरा ज्ञान बाबा ने हमें समझ दी है, लेकिन जिसने जिस भावना से भगवान को याद किया, भावना भगवान समझ करके अगर किसी ने किसी को याद कर लिया तो उसी रूप में उसको अनुभव हो गया, साक्षात्कार हो गया, बाबा ने कराया है। और इसीलिए लोगों की भावनाएं बैठती गई कि यही भगवान है। अब कोई कितना भी समझाने की कोशिश करो, कोई अगर हनुमान जी का भगत है, श्री गणेश जी का भगत है, देवी का भगत है, उसको कितना भी कहो नहीं, ये सब देवताएं हैं, निराकार एक शिव बाबा है, तुम उसको याद करो, क्या कहेगा, मुझे निराकार की याद नहीं आती, मेरा तो भगवान यही है, मेरा तो इष्ट यही है। बहुत समझाने के बाद परिचय धीरे धीरे जब मिलता है कि नहीं, ये सब आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, पावन आत्माएं हैं, परमात्मा अलग है, इस बात को सिद्ध करने के लिए बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ी आकर के। ज्ञान दिया, समझ दी है, और बच्चे अगर सिर्फ भावना रख करके याद करें तो थोड़ा सा कुछ प्राप्ति हो सकती है, लेकिन संपूर्ण वर्षा बाबा से मिले, सर्व शक्तियां मिल जाएं, आत्मा शक्तिशाली बन जाए, सर्व समर्थ बन जाए, उसके लिए विवेक भी बहुत जरूरी है, समझ जाए। जब हम याद में बैठते हैं तो पहला स्टेप जो बाबा ने बताया है कि आप इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हैं, आप एक आत्मा हैं, अपने स्वरूप में स्थित होकर के, अपने स्वधर्म में स्थित होकर के, इस शरीर के भान से डिटैच होकर के फिर प्यार से बाबा कहो तो बाबा आपके सामने आएगा और आप उस परम धाम घर की अनुभूति करेंगे, उनके स्वरूप की अनुभूति करेंगे, उनसे शक्ति प्राप्त करेंगे और उस शक्ति के आधार से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। भावना के आधार से प्राप्तियां होती हैं लेकिन परिवर्तन नहीं होता। संस्कार परिवर्तन अगर नहीं हो रहे हैं, जैसे संस्कार हम लेकर के आए, ज्ञान में चले, भावना से चले, स्नेह से चले, हम लोगों को बचपन में तो स्नेह नहीं खींचाना, हमको थोड़ी ज्ञान था कुछ भी, स्नेह बहनों का मिला, टोली मिली, भोग मिला, प्रसाद मिला, धीरे धीरे आ गए, आने के बाद पता चला ज्ञान क्या है, इसकी गहराई क्या है। और जब ज्ञान युक्त स्थिति बनी, ज्ञानी तू आत्मा बन गए, तो भावनाएं कम नहीं हुई। कई बार ज्ञान में चलने वालों की भावनाएं टूट जाती, अनुभव किया होगा, भक्ति के अंदर जो भावनाएं थी, ज्ञानी तो आत्माओं में भावनाएं हैं, क्या समझते हो, हैं माताएं है? जो पहले भावना थी अभी भी है नहीं, पहले कितनी भावना थी, अगर मंदिर में जाते थे तो बहुत प्यार से पहले वहां की मिट्टी सिर पर लगाते, उसको झुकते, प्रणाम करते, फिर अगर पुजारी जी ने थोड़ा सा प्रसाद दे दिया तो क्या खुशी से खाएंगे, कितना प्यार से उसको आशीर्वाद उसके लेंगे, सिर पर हाथ रखाएंगे, वो क्या क्या रखते हैं आजकल भक्ति में, और फिर चढ़ावा चढ़ाएंगे मंदिर के अंदर। लेकिन अभी ब्राह्मण जाते हैं तो कभी कभी पुजारी नाराज हो जाते हैं, कहते ये क्या है, सूखे सूखे लोग आए हैं, बड़े दिखाई तो देते हैं, बड़े रायल हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, वे तो 5 रुपये अभी नहीं चढ़ाते हैं। हमारी दादी ने हमें सिखाया था, दादी जी कभी मंदिर में जाती थी या हम लोग कहीं जाते थे, कहती थी कभी भी खाली हाथ वहाँ नहीं जाना, कुछ भी हो, कैसा भी मंदिर हो, पुजारी जो खड़ा है उसको, उसकी नजर भगवान पर नहीं है, आपकी जेब पर है। ये डालता कितना, ये क्या करता है, दान कितना करता है, और आपने अगर नहीं कुछ किया तो भले वो दिखावा करे आपके साथ, लेकिन उसके अंदर से आपके प्रति कुछ न कुछ नेगेटिव निकलेगा। इसलिए बहुत ध्यान देना। दादी जी कहती थी जैसे सब भक्तों की भावनाएं होती हैं, भले आपके पास समझ है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपकी भावनाएं टूट जाएं, भावनाएं होनी चाहिए, क्योंकि वहां शक्तियां तो हैं, लोगों को अनुभव तो हो रहा है ना, प्राप्तियां भी हो रही हैं, जिस भावना से जो जिसके पास जाता है, जिस मंदिर में जाता है, उस मंदिर से उसे कुछ न कुछ मिलता है, तब तो जाता है। अब हम ज्ञानी बन गए इसके मतलब ये तो हमारे ही मंदिर है। कई लोग यहाँ जलदलवाड़ा मंदिर में जाएंगे, अब बाबा का ज्ञान है, समझ है, लेकिन अगर हम ऐसे ही जा करके बोल देते हैं ये फलाने की मूर्ति है, ये फलाने की मूर्ति है, तो उनको बड़ा खराब लगता है कि आई ब्रह्मा कुमारों को हो गया दिमाग है, वो समझते हैं कि इनको पता ही नहीं क्या है, क्या क्या बोलते हैं। पिछले बार तो कुछ समय पहले तो उन्होंने बल दिया ब्रह्मा कुमारियों के लिए अलाउ ही नहीं है, मंदिर में आना ही नहीं, गुस्सा हो गए वो लोग, क्योंकि हमारे भाई बहने जाते हैं चुपचाप मंदिर दर्शन करो, भावना से देख करके आ जाओ, मना नहीं है, लेकिन वहां जा करके डिबेट करेंगे ये फलाने का मंदिर है, वो फलानी मूर्ति है, फलानी मूर्ति है, देखो बैकुंठ है, बाबा ने हमें योग सिखाया है, हमें ऐसे योग करना है, ये हमारी मूर्ति है, तेरी मूर्ति, चर्चा करने लगते हैं। तो उन लोगों को बहुत, जो पुजारी होते हैं जो वहाँ देखते हैं, उनको बड़ा अंदर से खराब लगता है। तो समझ जरूरी है, ज्ञान रखो, लेकिन ज्ञान युक्त भावना चाहिए, समझ से भावना रखो। हैं हम जानते हैं, लेकिन किसी की भावनाओं को हम ठेस तो नहीं पहुंचा सकते, ये ऐसे नहीं कह सकते हैं किसी स्थान पर जाकर के क्या है, हम जानते हैं इनको, इनकी बायोग्राफी को ये लोग तो जानते ही नहीं है। बहुत ध्यान देना, नहीं तो यहाँ सेवा की बजाय सर्विस के बजाय डिससर्विस होती है। भावनाएं बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं तो हमारे ही संगम योगी ब्राह्मणों की तपस्या के यादगार, हमारे ही भविष्य के यादगार, जो आज इतने प्यार से सब मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, और जितना जिसने इस समय विधि पूर्वक हर नियम का, हर मर्यादा का पालन किया है, जितना अपनी आत्मा को उसने पावन बनाया है, उसी आधार से भक्ति शुरू होते ही उसकी पूजा होने लगती है। आज जितनी विधि पूर्वक भारत में मंदिर में पूजा होती है, दूसरे देशों में नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। भले मंदिर हैं, श्रद्धा है लोगों की, मैं विदेश में कई मंदिरों में गया हूँ, देखा है वहां भी भावनाएं हैं, उनको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, है क्या चीज। हम एक बार गए मॉरिशियस में, मॉरिशियस में एक शिव बाबा का बड़ा सुंदर मंदिर था, शंकर जी की मूर्ति बहुत बड़ी बाहर बनी थी, खड़ी मूर्ति थी, लेकिन शिव बाबा का बहुत प्यार का मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत भक्त जाते थे, तो हम तो बाहर से ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे गए और ऐसे जा रहे थे, पुजारी ने दौड़ा, दौड़ के आया, कहता भाई साहब अंदर चलो, अंदर चलो। ने कहा भाई बड़ी भावना से बुला रहा है, उन्हें बहुत प्यार से मंदिर के अंदर ले जाके दर्शन कराए, फिर प्रसाद दिया, एक गोछा उड़ाया, फूल दिए। जब हमने देखा इतनी भावना से करा, तो हमने भी कुछ चाहया, चाहने लगा, कहने नहीं नहीं चाहने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कभी पुजारी नहीं बोलता है, पता नहीं ऐसे क्यों बोल रहा है। जब हम सब बाहर आ गए तो वो भी बाहर आया, और बाहर आके कहता है मैं भी ज्ञान में चलता हूं। मैं भी बाबा की मुरली सुनता हूँ, मेरा बेटा समर्पित है, लेकिन ये हमें पूजा का पहले से ही परिवार की पुश्तैनी ये हमारी चलती आ रही है, हम ये छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम बाबा बाबा कह के ही पूजा करते हैं। आपको पता है सोमनाथ मंदिर में भी एक पुजारी है। सोमनाथ मंदिर में मैं जब गया तो हम लोग बहुत दूर खड़े थे, बाहर 5-7 बहुत भीड़ थी, मंदिर आरती का समय था, तो वहां से वो पूजा करते हुए आरती करते हुए सामने से इशारा करता, इधर आओ इधर आओ। हमने कहा पता नहीं किसको बुला रहा है, तो लोगों ने मेरे को, हम लोगों को कहा कि आप लोगों को बुला रहे हैं। बिल्कुल पीछे थे हम, तो हम पहुंच गए जा करके, सबको क्रॉस करते हुए आगे। बहुत प्यार से उसने आरती किया, सब करने के बाद जब पूरी हो गई तो अलग रास्ते से हम लोगों को निकाला, भीड़ में नहीं जाने दिया, और बाहर आके मिला, कहता है मैं बाबा का भोग बनाता हूँ यहाँ पर, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ। जो बाबा का भोग बनाता है मंदिर के अंदर, शिव बाबा का भोग बनाता है जो, वो बाबा का बच्चा है, और इतनी श्रद्धा भावना से बनाता है, उसको लगता है मेरा बाबा है, उस भावना से वहाँ भोग लगता है। और उसने दिखाया तो बाद में पूरा वहाँ पर बाहर जो चित्र थे म्यूजियम जैसा, वो सब खुद दिखाने लगा, गाइड करने लगा। तो ऐसे कई बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान है, लेकिन भक्ति बाबा गलत नहीं कहता, इसको हम कभी गलत नहीं कहते हैं। अगर उसी भावना से बहुत प्यार से श्रद्धा से कोई कर रहा है तो उसका भी तो फल उसको मिलता है, नहीं मिलेगा, जरूर मिलता है। लेकिन बाबा कहते हैं आप बच्चे ज्ञानी तू आत्मा हो, ज्ञानी माना समझ, समझदार, हर बात की समझ चाहिए। जब आप योग करते हो बहुत समझ से, एक बार यहां पर मधुबन में हमारी दादी जी जब ऐसी मुरली सुनती थी ना, तो उस पर कुछ न कुछ चिटचैट जरूर होती थी, वर्कशॉप होती थी, मेडिटेशन हॉल, यही मेडिटेशन हॉल था। और यहां ही दादी ने दो ग्रुप बनाए, एक तरफ बहनों को बिठाया, एक तरफ भाइयों को बिठाया। बहनों को कहा तुम हो भावना वाली, तुम भावना वाले भावना बनो, और तुम भाई लोग विवेक बनो, क्योंकि भाई लोग बहुत विवेक चलाते हैं ना, हर बात में बुद्धि चलाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों क्या के कैसे क्वेश्चन में अगर चले गए तो ज्ञान भूल जाएगा, उलझ जाओगे। और भावना वाले बड़े ठीक है, जैसा बाबा ने कहा, जो बाबा ने कहा वो सत्य वचन है, वो कभी क्वेश्चन नहीं करते भावना वाले। लेकिन जिनके पास थोड़ा विवेक होता है, मेरे पास तो रोज कोई ना कोई एक दो चार फोन आ जाते हैं, आज बाबा ने ऐसे कैसे कहा, कल की मुरली में तो अलग था, आज की मुरली में अलग आया। विवेक चलाते हैं, बुद्धि बहुत चलाते हैं, ऐसा क्यों कहा, ऐसा कैसे हो गया, बाबा ने ये कहा, किस भाव से कहा, जानने की भावना से भी कहते हैं, लेकिन कईयों की तर्क वाली बुद्धि होती है, और बाबा को तर्क वाली बुद्धि पसंद नहीं आती, भावना वाली बुद्धि चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का बच्चा बाबा के सामने बैठा है उसी प्रकार की उसको श्रीमत मिल रही है। अब मुरली तो बन गई, अब कल की मुरली में जैसे था, कोई आके बाबा से पूछे कि बाबा मुझे शादी करनी है, तो बाबा क्या कहेगा, भले करो, आपकी मर्जी, आप मालिक हो, बाबा के शब्द थे आप मालिक हो। अब बाबा ने तो पूरी श्रीमत दी है, लेकिन आपका विवेक नहीं मान रहा है कि क्या करूं, माँ बाप नाराज हो जाएंगे, परिवार वाले नाराज हो जाएंगे, करना तो पड़ेगा ही, माना आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है। और बाबा अगर मना कर दे नहीं करो और फिर आपने कर लिया तो डबल श्रीमत का उल्लंघन हो गया। एक तो श्रीमत पहले से मिली हुई है मुरली के अंदर कि अब इस कलयुग के अंत में कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनाना, जो बना है वो तो चुक तो करना ही पड़ेगा, पहले से बना लिया है आपने तो ज्ञान योग के बल से उसको काटना है, चुक तो करना है। लेकिन ज्ञानी तू आत्मा बन करके फिर कोई बात पूछे, बाबा मुझे खाना पड़ता है। एक बार बाबा से किसी ने पूछा, बाबा मेरे को बीड़ी पीने के बिना मेरा पेट साफ नहीं होता, मुरली में आया है, बाबा कहते भले पियो जाके बच्चे, लेकिन देवता बनना है तो ध्यान देना, देवताओं का ये खान पान नहीं है। देवता बनना है तो आपको कुछ भी हो जाए ये नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। तो ज्ञानी तो आत्माएं जो समझदार हैं वो समझती हैं कि ये जो श्रीमत मिली है, जो ये मर्यादाएं बताई गई हैं, ये हमारे जीवन को महान बनाने के लिए हैं, ये देवता बनाने के लिए हैं, न कि ऐसे ही बाबा ने कह दिया पालन कर लो। जब सब श्रीमत दे दी है तो श्रीमत में कभी भी अपनी मत, मनमत या दूसरों की परमत ऐड नहीं करो। कई बार ऐड कर देते हैं, ऐसा कैसे होगा, ये तो करना पड़ता है, ये तो सब कर रहे हैं। मनमत, श्रीमत क्या कहती है? बाबा तो कई बार कहते हैं श्रीमत सिर माथे, प्राण जाए पर वचन न जाए, कुछ भी हो जाए, मरना भी पड़े तो भी श्रीमत से पीछे नहीं हटना। इतना तक बाबा ने हम सबको इस बात का ध्यान खिंचवाया। अब फिर भी आकर के मेरे आगे कोई बोले आकर के, या बड़ों के आगे बोले, बाबा के आगे बोले, बाबा मुझे करना पड़ता है, मुझे बाहर खाना पड़ता है, मुझे रंगीन ड्रेस पहननी पड़ती है, मुझे शादियों में जाना पड़ता है, मुझे ये करना। भले बच्चे, भले प्यार से कहेगा भले जाओ, सिनेमा देखना पड़ा भले जाओ। अब एक दिन सख्त हो गया, कहता बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि बच्चे ऐसे बैठे हैं जो शक्तिशाली हैं, उनके आगे वो श्रीमत दे दिया, बिल्कुल बच्चे नहीं जाना, सिन की माँ पाप, सिनेमा नहीं देखना। और दूसरे दिन देखा कोई कमजोर बच्चा बैठा, उसको मैं श्रीमत दे दूं, तुम नहीं जाना, और फिर चला जाएगा तो उस पर बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत रहम दिल है बाबा हमारा, इसलिए कहता है बच्चे जो सही मालिक को जो करना है, श्रीमत तो मिल गई। तो जो भावना वाले बच्चे हैं वो भावना वाले कभी कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन जो विवेक को यूज कर रहे हैं, ये जो श्रीमत दी गई है, ये जो कहा गया है संगम पर, उसके पीछे भाव क्या है, भावना के साथ भाव को देख रहा है कि बाबा के कहने का भाव क्या है, मतलब क्या है, किस लिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ये अंतिम जन्म है, सब आत्माओं को वापस घर चलना है, फिर नई सृष्टि पर नया पाठ बजाने के लिए आना है, और आधा कल्प के लिए इन बंधनों से, इन बुराइयों से, इन विकारों से मुक्त स्थिति में, जीवन में रहते मुक्त रहना है। अब यह है विवेक, यह है समझ, यह है ज्ञान। और ऐसी ज्ञानी तो आत्माएं भावनाओं को साथ लेकर के चलती हैं, लेकिन कभी भी समझ में अपनी भावनाओं के आधार से उसको लूज नहीं करती। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे ज्ञानी तो बने हो, विवेक तो रखा है, समझ तो चाहिए, लेकिन हर बात में प्रश्न नहीं करो। ऐसा क्यों होता है? कई लोग, हमारी बहनें जब ट्रांस में जाती हैं, उसके ऊपर भी कई प्रश्न करते हैं, ये जाती है या नहीं जाती है, कहाँ जाती है, कैसे जाती है, ये संदेश ही अलग सुना रही है, दूसरी संदेश ही अलग सुना रही है, वतन तो एक ही है, बाबा तो एक ही, अलग अलग संदेश क्यों आता है? अब विवेक वाले अपनी बुद्धि को यहाँ पर बहुत प्रयोग करते हैं, और भावना वाले कहते हैं ठीक है, बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने, बाबा को भोग लगाया, बाबा की दृष्टि पड़ी, बाबा की याद में बैठे, वो शक्तिशाली भोजन बन गया, अब वो संदेशी ने कुछ भी सुनाया हमें क्या करना, हमारे मतलब की बात है तो हम लेते हैं, नहीं तो हम छोड़ देते। कुछ उससे हम सीख सकते हैं, कुछ हमें श्रीमत मिल रही है संदेश के द्वारा भी, तो हमारे कल्याण की जो बातें आप ले लो, और नहीं कल्याण के तो क्वेश्चन क्यों उठा रही है, संदेश कैसे आ गया, ये क्यों हो गया, यहाँ तो ऐसे संदेश आया, वहां तो ऐसे आया। कई अपने विवेक को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बाबा उसके लिए मना करता है। बच्चे ये हर एक आत्मा की कैचिंग पावर है। बाबा तो कोई चीज दिखा रहा है, ऊपर देख रही है, लेकिन जिसने जितना उसका ब्रेन डेवलप हुआ है, जितना उसके पास कैचिंग पावर है, उतना उस दृश्य को उस दृश्य कैच कर रही है, और वही आपके आगे सुना रही है। दिखाने वाले ने तो दिखाया, लेकिन कैच करने वाले नंबरवार हैं। अब ये समझ चाहिए कि भाई हर एक संदेशी का, हर एक का अपना अपना बुद्धि की समझ है, कैचिंग पावर है, जितना वो सच्ची है, भोली है, बहुत अच्छे अनुभव कई बार होते हैं। एक बार मैं संदेश एक जगह गया, बहुत छोटी कन्या थी, और उस दिन कोई ऐसा समय था जो अचानक वो संदेश में, ट्रांस में, भोग में गई, और बिल्कुल एक्यूरेट संदेश लेके आई। हमें पता था कि ये जो सुना रही है बिल्कुल ठीक सुना रही है। फिर मैंने उससे पूछा, तेरे को ये क्या अनुभव होता है, कैसे अनुभव होता है? छोटी थी, भोली थी, तो उसने सब कुछ स्पष्ट सुनाया कि मैं कैसे बाबा के पास जब जाती हूँ, बाबा कई बार कई बच्चों के अंदर के संकल्प भी मुझे बता देता है, ये इसके अंदर चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, लेकिन कहता है बच्ची उसको नहीं बताना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको कहना नहीं कुछ, लेकिन ये ऐसा है, ये ऐसा है। और वो सच्ची थी, भोली थी, कभी कभी सुना देती थी, कि ऐसे कैसे बैठे हो, ऐसे कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। बाबा यहां तक भी वतन के दृश्य कैच कर सकता है। एक बार क्या हुआ, उसी सेंटर की बात कहने लगी कि मकान मालिक ने मकान खाली करने के लिए फोर्स किया, खाली करो। अब किराए का मकान कहीं जल्दी मिलता नहीं था, जिस प्रकार का उसने बनाया था बहुत अच्छा, अपना किराए का मकान ठीक किया था, वो मकान मालिक जिद पर आ गया, नहीं इतने दिन में आपको खाली करना, आप कहीं भी जाओ। अब संदेशी को बहनों ने यूज किया वहां पर, बोला तुम जाओ बाबा से पूछो कहाँ मकान मिलेगा, और बाबा बहुत प्यार से उसको कहे बच्ची बाजू में मिल जाएगा, बाजू में मिल जाएगा। अब वो सारा टाइम इधर उधर ढूंढती रही कहाँ मिलेगा, कौन मिले, मकान ही नहीं मिले, मिले ही नहीं, कोई दे ही नहीं किराए पर। आखिर वो बहन तंग होके कहती तुम बाबा को बोलो, बाबा बाजू में मिलेगा तो आप चलो साथ में मेरे, दिखाओ, तुम जाओ संदेश में, ट्रांस में, तुम नीचे नहीं आना, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे, बाजू में कहाँ मिलेगा। तो वो बहन को ट्रांस में गई और ले जा करके आगे आगे वो चलती गई, और पीछे से वो बहन जा रही थी, एक भाई सामने से दरवाजे पर खड़ा था, बहन जी इधर आओ, आप लोगों को मकान चाहिए क्या, ये मकान है ले लो, वहीं आँख खोल दिया उसने। कहने का मेरा मतलब है कि बाबा टच जरूर करता है, टच जरूर करता है, लेकिन टचिंग को कैच करने वाली की बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए, निर्दोष चाहिए, केवल भावना नहीं चाहिए, उसमें समझ चाहिए। राइट और रॉन्ग की समझ जरूरी है, इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा बनाया, विश्व कल्याण की बेहद सेवा के लिए। इस मुरली में बाबा ने कहा है स्वकल्याण के लिए तो ठीक है, भावना रखो, स्नेह रखो, स्वकल्याण तक ठीक है, लेकिन अगर विश्व कल्याणकारी बनना है, अगर सर्वशक्ति संपन्न बनना है, सब प्राप्तियां बाबा से करनी है, तो आपको ज्ञान और योग को लेकर के चलना, उसके फाउंडेशन को मजबूत करो। तो योग के अंदर जितना स्नेह युक्त याद है, जितना बाबा के प्रति बहुत दिल का स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है, मांगो वाला, मांगने वाला नहीं। कई बच्चे मांगते रहते बाबा ये मदद करो, ये काम करा दो, ये कर दो, ये कर दो, बाबा मुस्कुराता रहता है क्या बच्चे मांगते, छोटी छोटी चीज, मैं विश्व का मालिक बनाने के लिए इनको आया हूँ। कोई कहता मेरी बीमारी ठीक कर दो, कोई कहता मेरे सेंटर दिलवा दो, कोई कहता मेरा ये कर दो, कोई कहता ये कर दो। ये तो भक्ति वालों की आदत है, बच्चे योग में मांगते थोड़ी कुछ, समान बन करके बैठो, जैसा बाबा है ऐसा मैं आत्मा उसी स्वरूप में स्थित होकर के बैठो, समानता है तो मिलन है। भक्ति की तरह आप तो बड़े ऊंचे हो, महान हो, सर्वशक्तिवान हो, मैं तो नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, कहां हम कहां वो, कैसे मिलन होगा। कई बार बाबा बड़ी रमणीक बात कहते हैं, बाबा है चमकीली ड्रेस में, लाइट की ड्रेस में, और बच्चे पहन के आ जाते हैं मिट्टी के ड्रेस। आज युगल हो बहुत सुंदर एक हो और दूसरा एकदम गंदी मिट्टी वाली ड्रेस पहने हो, तो भी साथ लेकर के चलना नहीं चाहेगा, कहे तुम यहीं बैठ, तुम्हारी ड्रेस ठीक नहीं है, तुम्हारा रूप रंग ठीक नहीं, मैं साथ नहीं ले जाऊंगा। अब बाबा के साथ रहना है, सत्यम शिवम सुंदरम, इतना सुंदर, इतना पावन, और वो सब रथ लेता है, वो भी एकदम पवित्र लाइट का शरीर है, फरिश्ता शरीर है, समय हम उससे मिलना चाहते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे शक्ति लेते हैं, और हम वही देवमान में बैठे हैं मिट्टी वाली ड्रेस पहन करके। पहले मिट्टी की ड्रेस उतारो तो, पहले इस हल्के हो जाओ, ये मिट्टी की ड्रेस हमें पाठ बजाने के लिए मिली है, हम इसमें प्रवेश करते हैं फिर इससे हम अलग हो जाएं। है अपने संकल्पों का ही खेल, आत्मा अलग होके तो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन एक भान रहता है कि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हूँ, अलग हूँ, ये शरीर अलग है, ये शरीर मैंने आधार लिया है, मैं मालिक हूँ, और मालिक बन करके जितना पवित्र शुद्ध संकल्पों में हम रहते हैं, उतना हमारा शुद्ध संकल्पों का, पवित्र संकल्पों का ओरा बनता है, आभा मंडल जिसको हम कहते हैं, उसी आभा मंडल में जब आत्मा रहती है तो फरिश्ता ड्रेस बन जाती, वो बहुत चमकीली ड्रेस है, उसके अंदर न व्यर्थ, न नेगेटिव, न कोई अशुद्ध, कोई ऐसा संकल्प नहीं है जो लाइट के ड्रेस में दाग हो जाए। बाबा की जो ड्रेस है इस समय, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों की ड्रेस क्या है, एक दिन मैंने दादी गुलजार से एक बड़ी अच्छी रूह रिहान किया, बैठे थे ऐसे योग के बाद, दादी को मैंने कहा, दादी आप कहती हो संदेश में कि आज बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे, तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा तो एक ही तन में होते हैं, वो रूह रिहान कैसे करते हैं? दो आत्मा एक तन में बैठ के बातें कैसे करेंगी? क्या मनो एक्टिंग होती होगी? एक बोलता है फिर दूसरा बोलता है। तो दादी बहुत रमणीकता से हंसने लगी, कहती ऐसा नहीं होता। मैं, क्या होता है दादी? बोला जब बाप दादा की रूह रिहान मैं देखती हूं वतन में, तो ब्रह्मा बाबा एक साकारी रूप में दिखाई देता है, ये साकारी रूप जैसे उनका दिखाई देता है, और जब शिव बाबा दिखाई देता है तो आकारी रूप में दिखाई देता है, लाइट के शरीर में है शरीर, बिना शरीर के तो बात नहीं करेंगे दोनों, लेकिन जो ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप है जिसको बाबा ने सबसे पहले तैयार किया, समझ रहे हो मेरी बातों को ना? शायद नए नए कोई हो तो ना समझ में आती हो। जब शिव बाबा इस धरा पर अवतरित हुए तो कहते हैं मैं आने के समय सूक्ष्म लोक की रचना करता हूं। सूक्ष्म लोक क्या है? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, तीन पुरियां दिखाई, क्योंकि बाबा के तीन कर्तव्य हैं। तो शिव बाबा ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप में पहले आए, और फिर वहां से बाप दादा ब्रह्मा में भी प्रवेश होने के पहले, ब्रह्मा साकारी है लेकिन वो आकारी ब्रह्मा की आत्मा को साथ लेकर के, जैसे संपूर्णता को साथ लेकर के बाबा उसमें प्रवेश हुए ब्रह्मा के तन में। इसलिए गुलजार दादी के तन में जब आए तो ब्रह्मा तो संपूर्ण बने, तो बाप दादा कंबाइंड होकर के फिर आते हैं, अकेले नहीं आते। तो हम सभी भी जब बाबा से मिलन मनाते हैं, रूह रिहान करते हैं, तो योग में स्नेह तो है बहुत, सच्चा दिल का प्यार है कि हम किससे मिल रहे हैं, कितनी सर्वोच्च शक्ति है, सर्वशक्तिवान है, हमारा बाबा है, और बाबा कहते ही वो स्नेह भी इमर्ज होता है, लेकिन एक स्नेह ज्ञान युक्त होने के कारण समझ से हम बाबा कहते हैं तो योग यथार्थ हो जाता। और यथार्थ मिलन जब होता है, जब लाइट की ड्रेस में आत्मा लाइट होकर के बाबा से मिलन मनाती है, तो बाबा से मीठी रूह रिहान भी करती है, शक्तियों का भी अनुभव करती है, उनकी सकास भी मिलती है, उनकी दृष्टि भी मिलती है। कई बार अनुभव होता है कि बाबा का वरदान ही हाथ मेरे मस्तक पर है, आकारी स्वरूप की याद, जिसको हम कहते हैं फरिश्ता स्थिति, जिसके लिए बाबा ने बहुत समय से अव्यक्त मूल्यां चलाई हैं, साकार मिलन कब तक। गुलजार दादी के द्वारा भी अव्यक्त मिलन जो आप कर रहे हो इस आकार में, ये कब तक? रथ की लिमिट है। क्या आप बच्चे अपने आप को अव्यक्त बना करके अव्यक्त वतन में मेरे से मिल सकते हो? इसका अभ्यास करो। अव्यक्त मिलन सदाकाल का मिलन है, और वो मिलन करने के लिए आपको अव्यक्त स्थिति में रहना होगा। रहो साकार में, कर्म करो, लेकिन जहां पर व्यर्थ और व्यक्त हो रहा है, जहां बातें व्यर्थ में जा रही है, समय व्यर्थ में जा रहा है, व्यक्त बातों में हम बहुत लगे हुए हैं, और आजकल तो माया ने सबके पीछे व्यर्थ और व्यक्त की कई चीजें लगा दी हैं। देखते रहो सारा दिन, मोबाइल हाथ में पकड़ो। कल हमारे भाषण में कोई कह रहा था शकुनी मामा ये सबके हाथ में आ गया है, खेलते रहो चौपड़। इसलिए ध्यान देना कि अगर व्यक्त और व्यर्थ बातों में बहुत इंटरेस्ट है तो अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त मिलन का अनुभव नहीं होगा। बाबा अव्यक्त हैं, अव्यक्त वतन में रहते हैं, और बच्चों को ऑफर है, आपका ये घर है, किसी समय भी आप आ सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितना समय मेरे साथ रहना चाहो मिल सकते हो, लेकिन आपको ये व्यक्त भाव व्यक्त भान को छोड़ना पड़ेगा। अब यहां आपको बुद्धि को यूज करना है, ऐसे नहीं हम स्नेह युक्त हैं, बाबा बाबा कह रहे हैं सब प्राप्ति हो रही है। परिवर्तन के लिए, विकर्म विनाश करने के लिए ज्वालामुखी शक्तिशाली याद चाहिए। ज्वालामुखी शक्तिशाली याद, ज्वालामुखी इसलिए कहते हैं जैसे अग्नि ज्वाला जब बनती है तो उसमें कोई भी चीज डाल दो वो परिवर्तन हो जाती, पिघल जाती है। आज अगर सोनार भी सोने को शुद्ध करना चाहता है, बिल्कुल प्योर सोना बनाना चाहता है, तो बहुत तेज आग के अंदर उसको डाल देता है, और उसके अंदर जितनी मिलावट है वो धीरे धीरे निकल जाती है, गल करके पिघल करके अलग हो जाती है। प्योर हो जाता है उस सोने से, फिर कितने प्रकार के जेवर कुछ भी बना सकता है प्योर सोने से, वो रियल गोल्ड मोल्ड हो जाता है सहज। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं संस्कार शुद्धि के लिए आपको शक्तिशाली याद की आग चाहिए, माना लगन इतनी तीव्र हो, वो स्थूल आग नहीं है, ये लगन ऐसी है कि एक बाबा ही सामने नजर आए, बाबा के सिवाय और कोई नहीं मेरा है, मैं और मेरा बाबा। जब इतनी अच्छी एकाग्रता होती है और उस स्वरूप में हम समान बन जाते हैं, तो जो संस्कार हैं, जो संस्कार हम बदलना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, जो हमारे इस ब्राह्मण जीवन में रुकावट डाल रहे हैं, इम्प्यूरिटी के संस्कार, देहमान वाले संस्कार, चिड़चिड़ेपन के संस्कार, गुस्सा नहीं जाता कईयों से, ज्ञान बहुत सुन लिया, सुना लिया, कोर्स करा लिया, लेकिन नेचर में वो जो अंदर गुस्सा भरा हुआ है, चिड़चिड़ापन भरा हुआ, वो समाप्त नहीं होता, आसक्तियां समाप्त नहीं होती, सूक्ष्म रगें जो हैं एक दूसरे दैहिक संबंधों में, वस्तुओं में, पदार्थों में, वो समाप्त नहीं हुई, और अगर कोई थोड़ा सा भी अच्छा है, महिमा हो जाती है, सेवा करता है, नाम शान हो जाता है, तो अहंकार इतना चल दिया, मैं भी कुछ हूं, मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरा भी कोई कुछ तो यहां पर रिस्पेक्ट होना चाहिए, उस तरह से अभिमान आता है। तो ये सूक्ष्म इनकी जो जड़ें हैं विकारों की, उन विकारों की जड़ों को खत्म करने के लिए हमें तेज आग, बहुत शक्तिशाली याद की जरूरत। उसके लिए स्नेह युक्त याद है, लेकिन भावनाएं ज्यादा नहीं है वहां पर, भावनाएं हैं, भावना से हम बाबा कहते हैं, लेकिन उस स्नेह युक्त याद, स्नेह में बैठते बैठते जैसे बाबा कहता है लव में लीन हो गई आत्मा, समा गई आत्मा, वो भक्ति वाला शब्द नहीं है लीन हो गई माना समाप्त हो गई, सागर जाके बूंद जाके सागर में समा गई, बाबा कहता वो तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया आपने, अविनाशी सत्ता है वो कैसे खत्म होगी, ऐसे लीन नहीं हो जाती है, लेकिन प्यार में खो जाए, समा जाए, और जब बाबा के प्यार में हम समा जाते हैं, उसके साथ हम कुछ समय भी रहते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तो हमारे संस्कारों में जो शुद्धि है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसको हमें बहुत अच्छा ध्यान देना, हम तपस्या करने आए हैं, हम भट्टी करने आए हैं, भट्टी के अंदर भी अगर हम परिवर्तन नहीं होते, माना ऐसा कोई संस्कार है जो हमें बहुत अंदर अंदर ब्राह्मण जीवन में विघ्न रूप है, रुकावट डाल रहा है, मुझे उसे समाप्त करना है। जितनी योग की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उतनी नेचर के अंदर सरलता, मधुरता, मिलनसारिता, रमणीकता, गंभीरता, पवित्रता, ये बहुत अच्छी इसकी वृद्धि होती, विस्तार होता है, अंदर से लगता है आत्मा एकदम शीतल काया वाली योगी बन गई, इसके अंदर कोई उत्तेजनाएं नहीं है, कोई आवेश नहीं है, आवेग नहीं है, कोई भी उत्तेजित नहीं होता है। एक दिन एक क्लास हो रहा था, एक बहन ने कहा चैतन्य है लेकिन चैतन्यता नहीं है, ना बड़ा अच्छा टॉपिक इसने सोचा है, चैतन्य है आत्मा लेकिन चैतन्यता जो हलचल वाली है वो समाप्त हो जाती है। अब ऐसा योग चाहिए, इसलिए ध्यान देना, आप आए हो, मेरी शुभ भावना है कि 3 दिन में कुछ ऐसा योग करो, मैं और मेरा बाबा बस। अब इसके लिए थोड़ा तो आपको एकांत में जाना होगा, भले संगठन में बैठे हैं, एक की याद में, एक के अंत में चले जाए। बाबा कई बार कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, और आप बच्चे जो हो जैसे उस स्वरूप में बैठ जाओ, बाबा की साथ का, उनके मिलन का, उनकी शक्ति का अनुभव करो। आज कोई किसी के साथ में बैठे, कैसा भी व्यक्ति है, आप संग कर लो, जिस प्रकार की उसकी नेचर है, जिस प्रकार के उसके भाव स्वभाव हैं, आप 5 दिन 10 दिन बैठ के देखो, धीरे धीरे वो अपने संग का रंग आपको लगाएगा। आप शक्तिशाली हैं तो आपका संग उसको लग जाएगा, और वो शक्तिशाली है तो उसका संग आपको लग जाएगा। इसलिए बाबा ने मना किया है ना ऐसे संग से अपने को बचाना, जो व्यर्थ बोलता हो, व्यर्थ देखता हो, व्यर्थ कहता हो, व्यर्थ वाले का संग नहीं करो, जो बहुत क्वेश्चन मार्क निकालता हो, बहुत सारी बातें ऐसा कैसे हो सकता, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, यज्ञ में ऐसा हो रहा, फलाना ऐसा कर रहा, वहां ऐसे हो रहा। बाबा कहता है इसे बच के रहना, वो संघ का रंग लगाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा, आपकी भावनाओं को तोड़ देगा। भावनाएं यहां हमेशा यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, बड़ों के प्रति अगर है आपकी, वो रिस्पेक्ट खत्म नहीं होगा। और अगर भावनाएं एक बार टूट गई, उनको जोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए ऐसे संघ में कभी नहीं जाना जो कोई भी बात आपको, व्यर्थ बातें, नेगेटिव बातें हैं, भले कुछ भी है, हमें नहीं सुनना है, बाबा ने मना किया है, किसी की नहीं सुनो तुम। बाबा को देखो, बड़ों को देखो और अपनी स्थिति को बनाओ। बाकी कौन क्या है, क्या कर रहा है, मुझे बाबा ने कहा तुम्हारे को ये कान बंद करो, नहीं सुनना है। नहीं तो चींटी अगर कान में चली गई ना, तो महारथी को भी बेहोश कर देगी। इसलिए व्यर्थ सुनना, देखना, बोलना और ऐसा वर्णन करने वाले के संग से अपने को बचाओ जो बहुत पॉजिटिव है, अच्छा बोलने वाले, उमंगुसा दिलाने वाले हैं, परिवार के प्रति, बाबा के प्रति, मुरली के प्रति, योग के प्रति, कोई अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जरूर उनके संग रहो, उनका संग आपको ऊंचा उठा देगा। लेकिन ऐसा व्यर्थ संग अगर किसी ने कर लिया तो सत्यानाश कर देगा, डुबो देगा। इसलिए हम सब बहुत ध्यान दें कि हम बाबा के ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है, ज्ञान और योग हमारे जीवन से दिखाई दे। कैसी भी बड़ी बातें आ जाएंगी, ज्ञानी योगी आत्मा का फाउंडेशन इतना मजबूत होगा जो कोई भी तूफान उसको हिला नहीं सकता। आएंगी तो जरूर, कलयुग के अंत में सब प्रकार के हिसाब किताब जो रहे हुए हैं वो सब चुकते होंगे, परिस्थितियां भी विकट हैं, हिसाब किताब भी हैं, किसी किसी के शरीर कैसे हिसाब आ रहे हैं, संबंधों में जो भी कुछ था, पहले बड़े अच्छे संबंध थे, बड़ी अच्छी सेवाएं हम मिलके करते, बाद में चलते चलते वो संस्कार, वो स्वभाव निकल आते, हिसाब किताब सामने आते, दूरी बढ़ जाती, और फिर उनका सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, इतना अच्छा स्नेही सहयोगी फिर ऐसे कर रहा, फिर अनुमान लगाते, पता नहीं कौन इसको साथ दे रहा, कौन। कई प्रकार की माया जो है व्यर्थ के रूप में बहुत आती। हम सब इन व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करके अपनी अव्यक्त स्थिति बनानी है, मुझे बाबा के समान बनना है, लक्ष्य रखो ज्ञान और योग का फाउंडेशन, इसके सिवाय कोई बात मुझे न सुननी है, न देखनी है, न करनी है। तो स्नेह युक्त याद, बहुत प्यार से बाबा कहो, और कहो ही नहीं, साकार वतन में नहीं रहो, बाबा के पास चले जाओ, सामने देख करके कि बाबा ने कैसे उड़ने के हमें पंख दिए हैं ज्ञान और योग के। जिसके पास ज्ञान और योग के पंख हैं, वो साकार वतन से सहज ही अव्यक्त और मूल वतन की यात्रा कर सकता है। बुद्धि की यात्रा है, कहीं हम जाते नहीं हैं, कहीं हम चल फिर नहीं रहे हैं, लेकिन एक स्थान पर बैठे हैं। समझ है मैं एक लाइट हूं, मैं एक ज्योति हूं, मैं एक बहुत पवित्र शक्ति हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं। अब ये स्मृति आई, बाबा कहाँ है, बाबा के सामने हम पहुंच जाते हैं, बाबा की शक्तियों का अनुभव करते, उनके साथ का अनुभव करते। अगर कोई रोज 15 मिनट 20 मिनट भी कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करे, पतित पावन, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, प्यार का, शांति का, सुख का, आनंद का सागर, और उसके साथ मैं कंबाइंड हूं, उसके संग का रंग नहीं लगेगा, वो हमारे लक्षण जीवन में नहीं दिखाई देंगे। पतित पावन के साथ रहते पतित संकल्प कैसे आ रहे हैं, विकारी संकल्प क्यों आएंगे। जितना साथ हम रहते हैं उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। हम योग कर रहे हैं सिर्फ ऐसे भावना से कर रहे हैं, लेकिन अगर यथार्थ नहीं है तो परिवर्तन नहीं आता। इसलिए सब बाबा के बच्चों को भावनाएं कम नहीं करनी है, भावना प्रधान बन के रहो, लेकिन ज्ञान युक्त भावना चाहिए। और योग कोई सूखा नहीं है, बैठ जाओ, कईयों का मुंह टेढ़ा हो जाता, कई आंख ऊपर उठा लेते, कोई कुछ करने लगते, क्या योग है। अरे प्यार से बाबा से मिलन मना रहे हो, बातें कर रहे हो, खुशी चेहरे से दिखाई देनी चाहिए, स्नेह चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। किसके प्यार में खोया हुआ है, नैन गीले हो रहे हैं, क्या मिला इसको, कहाँ है। मैं तो अपनी दीदी को जब देखता था, योग कराती थी, इतनी अच्छी एकाग्रता थी, अमृत वेले आके ऐसे बैठती थी शेरनी जैसे, आंख भी नहीं झपकती थी, लेकिन एकदम नयन एकदम गीले गीले, जैसे एकदम कहीं प्यार में खो गई है। उसका लौकिक नाम भी गोपी था, बाबा ने अलौकिक नाम मनमोहिनी दिया था। लेकिन वो दीदी का वो गोपीपन उनके नैनों से, उनके चेहरे से झलकता था, जैसे कहीं किसी के प्यार में खोई हुई है। और ऐसी याद एकाग्रता वाली जो उनके द्वारा कई जब विदेशी आने लगे ना, ऐसा दृष्टि देती थी तो उसको सतयुग का स्वर का साक्षात्कार होता। बड़े अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। दीदी कभी क्लास नहीं कराती थी, कभी कोई ऐसी बात उनको ज्ञान योग की नहीं सुनाती थी, सिर्फ योग कराती थी और ऐसे प्यार से दृष्टि देती, उड़ा देती थी हाँ शरीर से। शक्ति थी, भावनाएं थी, स्नेह था, लेकिन वो योग की यथार्थ विधि थी। बाबा जो है जैसा है उसको पहचान करके उसी प्यार में खो जाना, समा जाना। तो आप सब बाबा के बच्चे स्नेही हो, भावना वाले भी हो, भावना का जरूर बाबा भाड़ा देगा, मदद करेगा। लेकिन अगर किसी भी परीक्षा में, किसी भी हलचल के वातावरण में सेफ रहना है तो ध्यान देना, हमें ज्ञान और योग का फाउंडेशन पक्का करना है। ज्ञानी उसको कहते हैं, समझदार है, जो कुछ बोलो करो, करने के पहले, बोलने के पहले सोच लो, राइट है या रांग है, करना या नहीं करना, बोलना या नहीं बोलना। अगर कर लिया और फिर सोचते हुए नहीं करना चाहिए तो वो अज्ञान है, बेसमझी है। ज्ञानी आत्मा कहते हैं सोचने के पहले भी सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा, बोल रहे हो जो, कह रहे हो जो, उसके पीछे क्या होगा, आगे रिजल्ट इसके क्या होगी, परिणाम को सोच करके फिर बोलो। तो सोच समझ करके कहने वाला, चलने वाला, बोलने वाला ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी किसी भी नए बंधन में नहीं बंध सकती। कोई कितना भी पैसे वाला हो, कोई भी कितना भी सहयोगी हो, मददगार हो, धनवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, ज्ञानी तो आत्मा जानती है सब पाठधारी हैं। अगर कोई आत्मा विशेष है, प्रभु देन इसको मिली है, अपना भाग्य बना रहा, मुझे क्या चाहिए, मैं उसके प्रभाव झुकाव में क्यों आऊं, ऐसी ज्ञानी तो आत्मा कभी किसी भी आत्मा पर न प्रभावित हो सकती है, न किसी से वैर रख सकती है। कहते हैं न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर, उसको कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा बन करके भी नया नया हिसाब किताब बना दे, इधर फंस गई, उधर फंस गई, ये बड़े अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, एक से स्नेह हुआ, दूसरे से नफरत हो गई, वास्तव में वो ज्ञानी नहीं। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को ज्ञानी तु आत्मा का टाइटल दिया और गीता में कहा है ज्ञानी तु आत्मा ही मुझे प्रिय है, योगी नहीं कहा, ज्ञानी प्रिय है। और जो ज्ञानी तु आत्मा है वो योगी स्वतः बन जाता है, उसको योग लगाने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कहीं फंसा हुआ नहीं है, स्वतंत्र है, उड़ता पंछी है। और योग यथार्थ है तो उसकी निशानियां हैं वो इंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकार, कर्म इंद्रियों पर उसकी विजय हो जाती। और कुछ भी हो, निंदा स्तुति जय पराजय मान हानि, सब में उसकी समान स्थिति है, हलचल में नहीं आता, ये मेरी ग्लानी कर रहे हैं, ये मेरा ये कर रहे हैं, कोई कुछ भी करे, हम अगर मर्यादा के अनुकूल चल रहे हैं, हम श्रीमत पर हैं, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। स्थिति स्थित प्रज्ञ हो जाए, अचल अडोल एक रस बन जाए, उसको कहते हैं ये योगी है। हलचल में आ गए, अभी अभी देखो बड़ा, कई बार बाबा रमणीकता से कहते हैं गैस का गुब्बारा होता ना, एकदम गैस भरी ऊपर उड़ गया और हवा निकली फट से नीचे आ गया, ऐसा नहीं बनना। अभी अभी बहुत उमंग उत्साह और अभी अभी एकदम डाउन नहीं होना है, हमको एक रस ऊंचे से ऊंची स्थिति में स्थित रहना है और उसका आधार है ज्ञान और योग। तो अच्छी तरह से इसकी गहराई को समझना और अपने आप को स्नेह और भावना में कम नहीं करना, लेकिन ज्ञान और योग के साथ इसको प्रयोग में लाना, ठीक है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। अभी हम सब कुछ समय के लिए बाबा को प्यार से, बहुत भावना से इस सभा में आह्वान करेंगे, बुलाएंगे। 7:30 तक ही योग है, फिर उसके बाद और कुछ प्रोग्राम है। आधा घंटे के लिए आप सब बहुत अलर्ट होकर के आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने स्वस्थ स्वरूप को देखो, इस शरीर से बिल्कुल अलग हो जाओ और बाबा को ऐसे प्यार से आह्वान करो कि बाबा आप परम धाम में क्या कर रहे हो, आ जाओ मेरे सभा में, मेरे भ्रकुटी के साथ मैं आपको ये आसन देता हूं। तो हम सब पहले 5 मिनट एक गीत बजा दो, जो उठ रहे हो आ जाएंगे जल्दी से, फिर उसके बाद थोड़ा सा लक्ष्य देके योग करें।
आत्म पंछी उड़ उड़ जाए,
एक बहुत सुंदर अनुभूति, मैं मास्टर त्रिमूर्ति हूं, भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, बाप और दादा दोनों का आवाहन करो। बहुत फास्ट गति है, हर एक के साथ वो कंबाइंड हो सकता है। ऐसे अनुभव करो जैसे मैं बच्चा अपने माता पिता के सन्मुख साथ में कंबाइंड होकर बैठा हूं। एक तरफ ब्रह्मा माँ है, एक तरफ शिव बाप है, और मैं उनका बहुत सपूत सच्चे स्नेही, मैं आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूं। देखो इस त्रिमूर्ति का रस, उनकी शक्तियां, उनका स्नेह अनुभव करो, समानता का अनुभव करो। मैं आत्मा मास्टर त्रिमूर्ति हूं, प्रकृति आसन पर विराजमान, मेरे दोनों तरफ मेरे माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा विराजमान हैं। मैं उनकी दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूं। मैं उनके साथ कंबाइंड हूं। मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा, बाप समान बनकर अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्वात्माओं को सर्वशक्तियों की सकास दे रही हूं। मैं लाइट माइट संपन्न अव्यक्त फरिश्ता हूं। ये अव्यक्त वतन मेरा अपना निजी घर है। मैं अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा परमात्म शक्तियों का दान दे रही हूं। बहुत पवित्र और शक्तिशाली वाइब्रेशन सकाश के रूप में चारों तरफ फैल रहे हैं। अनेक आत्माएं उसका अनुभव कर रही हैं। ये प्रकृति पावन बनती जा रही है। आत्माएं मुक्ति का वरदान ले रही है। मैं मास्टर दाता हूं। सर्व का भला हो, सब सुखी हूं। ऐसी शुभ भावना की लाइट मुझ आत्मा द्वारा पूरे ग्लोब पर जा रही। उस लाइट के शरीर से अलग हो, अपनी अखंड ज्योति महतत्व परम धाम में मूल वतन में ज्ञान सूर्य बाबा के बिल्कुल समीप चमकते हुए सितारे रूप में अनुभवों के सागर में मैं आत्मा समाई हुई हूं। असीम शांति का पवित्रता का अनुभव करो। प्यार के सागर में समा जाओ। धाम घर का अनुभव करके मैं आत्मा इस साकार वतन भी सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने के लिए इस तन में अवतरित हुई। संगम युग पर कितना श्रेष्ठ भाग्य, भाग्य विधाता ने मुझ आत्मा को दिया है। मैं कितनी महान आत्मा हूं, हीरो पाटधारी आत्मा हूं,
तो सभी को ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। भ्राता जी का एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।